समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम हीटवेव के दौरान सुरक्षित रहने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि पूरा देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। तपती गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होना और लू लगना आम समस्या है। इससे बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। वैसे डिहाइड्रेशन की स्थिति किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन भीषण गर्मी में इसके होने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे शरीर का पानी पसीने के जरिए तेजी से निकल जाता है। इस मौसम में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए और लू लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा एस वत्स और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ पीयूष रंजन। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
नमस्कार
श्रोता, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो के फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मवीर दिल्ली से। जी धर्मवीर जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
जी।
हमारे आए हुए मेहमान को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसी जो प्रॉब्लम आती है, इस समय बहुत गर्मी ज्यादा, लू चल रही, हीट हो ज्यादा होने से, तो ऐसे ही व्यवस्था होनी चाहिए कि प्राथमिकता के हिसाब से स्कूलों में ही, कॉलेज में ही बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, जो अपने वो घर आके अपने पेरेंट्स को भी इस तरह की जानकारियां दें और हर स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा तो हमें इससे गजाने की जरूरत नहीं है, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। मेरा तो ये विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे?
आपने धर्मवीर जी बिल्कुल सही कहा। बच्चों के माध्यम से हमें जानकारियां बढ़ानी चाहिए और एक पूरा एक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो आवश्यक एहतियात लिए जाने चाहिए और उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से हमेशा प्रयास चलते रहता है। हम सारे देश में हीट वेव के लिए जो आवश्यक जानकारियां हैं उनको उपलब्ध कराने का हम प्रयत्न करते रहते हैं, एक तो मीडिया के माध्यम से, दूसरा जो गाइडलाइंस हैं हमारे उनके माध्यम से, और तीसरा जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, उन सबों के माध्यम से हीट वेव के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और वो प्रिकॉशंस बहुत ही
बार बार दोहराते रहते हैं। और साथ साथ जैसे एम्स नई दिल्ली बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर करता है और जो कि हम लोग समय समय पे ये नेशनल रेडियो और नेशनल टेलीविजन चैनल पर भी इस संबंध में जानकारियां बताते रहते हैं। स्कूल में भी ऐसी बातें लोगों को बताई जाती हैं बच्चों को।
हमारे दूसरे श्रोता मथुरा से जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सिसोदिया। सुरेंद्र जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारा संपर्क सुरेंद्र जी से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पीयूष, डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण हैं? कैसे हम समझेंगे कि डिहाइड्रेशन हो गया है?
देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेशन की कमी। हमारे शरीर का 3/4 हिस्सा जो है पानी और नमक से बना होता है और जब कभी भी इसमें अत्यधिक पसीने की वजह से या फिर अन्य किसी कारण से शरीर के अंदर में पानी और नमक की कमी हो जाती है तो एक डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है। इसमें डिहाइड्रेशन के प्रारंभिक लक्षणों में अत्यधिक प्यास लगना, बहुत थकावट होना और पेशाब की मात्रा में कमी होना, ये वो प्रारंभिक लक्षण है जिसके द्वारा कि हम लोग डिहाइड्रेशन की पहचान कर सकते हैं।
जो अत्यधिक छोटे बच्चों हैं उनमें कैसे पहचान की जाएगी कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है?
जी हाँ, जैसे कि बड़े एडल्ट होते हैं वो बता सकते हैं कि उनके शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे, जो इन्फेंसी, जो शुरू के एक दो वर्ष के बच्चे होते हैं, वो आपको ठीक से नहीं बता पाते हैं क्योंकि उस समय वो बोलना नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए जो मूल तौर पर है कि जैसे डिहाइड्रेटेड जो बच्चे होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी हम लोग कहते हैं, चिड़चिड़ापन उनका आ जाना, जरूरत से ज्यादा वो रोने लग जाते हैं वो, और वो जो मां का दूध या फिर जो और जो उनका जो यूजुअल भोज्य पदार्थ होता है उसको खाने में रुचि न दिखाना, खाने में बहुत परेशानी करना, और साथ ही साथ छोटे बच्चों में जैसा मैंने ये कहा कि उनकी आंखें जो है हल्की सी धस जाती है, अगर जीभ को देखें, डॉक्टर लोग जो हैं वो देख करके जीभ को देख करके हाइड्रेशन की स्थिति वो बता सकते हैं। साथ ही साथ जो चमड़ी में जो इलास्टिसिटी होती है उसको भी वो पिंच करके वो ऐसा देख सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए यह देखने की बात है, अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, गर्मी के मौसम में हो जाए, अगर वो पेशाब कम कर रहा है, भोजन कम ये कर रहा है, तो अत्यधिक छोटे बच्चों को ऐसे समय में किसी डॉक्टरी परीक्षण के लिए हमें ले जाना चाहिए।
डॉक्टर पीयूष, तेज गर्मी में दोपहर के समय से बहुत गर्म तेज हवाएं चलती, इसे लू कहते हैं, कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं, तो क्या इसके भी वही लक्षण हैं जो डिहाइड्रेशन के हैं?
देखिए, अत्यधिक गर्मी की वजह से जो लू लगने, जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसे हम लोग डॉक्टरी टर्म में हम लोग जो है हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसके कई चरण होते हैं, जैसे शुरुआती समय में जो हुआ हीट एग्जॉशन हो गया, फिर बाद में और ज्यादा ये होते समय में जो पेशेंट जो है वो डिलीरियस हो जाता है, जिसमें कि हल्की बेहोशी, बहुत घबराहट या और सारी चीजें हो जाती हैं, और आगे बढ़ते हुए इसके और जो सीवियर फॉर्म होते हैं उसमें जो है कॉमेटोज हो सकता है आदमी। तो जो ये कि अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन में ये कि डिहाइड्रेशन इसका शुरुआती लक्षण हो सकता है, जैसे कि शुरुआती में अगर जो गर्मी के कारण जो है जो हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर जब जो शुरुआती समय में ये हो सकता है, तो उसमें अत्यधिक थकान होना, पसीने का खूब निकलना, मुंह का सूखना, प्यास ज्यादा लगना, और ऐसे समय में पेशाब की मात्रा में अगर आप गौर करेंगे तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। ये प्रारंभिक लक्षण हुए जो कि शुरुआती लक्षण डिहाइड्रेशन के भी होते हैं, और अत्यधिक होने पर आदमी बहुत ज्यादा घबराहट, चिड़चिड़ापन और वो कहीं एक जगह मन नहीं लगना, ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं, और फिर अगर ज्यादा में हम लोग देखें तो वो बहुत ज्यादा उल्टियां आना, दस्त लगना, ऐसी सारी चीजें भी हो सकती हैं, और उसके बाद जो है ये गर्मी की वजह से कई बार दौरे और कई बार हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कम होना, ये लक्षण भी आ सकते हैं।
सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी,
हाँ नमस्कार जी। ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से
जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी, धन्यवाद जी, सारी टीम को, आकाशवाणी को नमस्कार।
नमस्कार,
बात ये है कि ऐसा देखा गया है कि जब भी हम बाजार में, मार्केट में कुछ अपने को कूल करने के लिए चाहे जूस पीते हैं, चाहे गन्ने का जूस हो या लेमन जीरा वगैरह लेते हैं, तो उसमें नमक की मात्रा इतनी अत्यधिक होती है कि वो जो है बाद में अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं। क्या ऐसी चीजें लेनी चाहिए वो लाभकारी हैं, या इसके अलावा और कोई अल्टरनेट है? कृपया इन पर आभार प्रश्न व्यक्त करें। आभार से मेरा जी, धन्यवाद
जी। देखिए, गर्मी में अत्यधिक गर्मी जब होती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक, जब गर्मी के कारण जो बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी के साथ जो कई जरूरी जो मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट सोडियम होता है, नमक होता है, वो भी बहुत आवश्यक होता है। ये दो चीज जो महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके साथ साथ जो हम लोग एनर्जी के लिए जो होता है वो ग्लूकोज जैसे जो पदार्थ होते हैं वो हम लोगों को लेना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें कि वो कौन से पेय पदार्थ होते हैं जो कि आवश्यक है हमारे शरीर को गर्मी में, अत्यधिक गर्मी के इस मौसम में, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नॉर्मल पानी पिए। नॉर्मल पानी के बाद आपके अपने स्वास्थ्य केंद्र में से जाकर के आप ORS का घोल का पाउडर ले सकते हैं, जिसको कि आप एक 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 पुड़िया को आप एक लीटर पानी में मिला करके उसे ठंडा करके बीच बीच में पी सकते हैं, या प्लेन वाटर जो सादे पानी से ज्यादा आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यहां मैं एक विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे अलग अलग तरह के पदार्थ, जैसे शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या गन्ने का रस आपने बताया, आम पन्ने का रस हो गया, शिकंजी हो गई, ये सारी चीजें स्वाद के लिए आवश्यक हैं, लेकिन मूल तौर पर जो सबसे फिजियोलॉजिकल सबसे उपयोगी जो पदार्थ है वो ORS का घोल है, जिसको कि हम लोग नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। लेकिन कोई भी शीतल पेय शीतल ये फ्लूड हुआ, चाहे वो नॉर्मल पानी हुआ या नींबू पानी हुआ, शिकंजी हुआ, वो जितना ज्यादा ज्यादा हुआ आप अपने स्वाद के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ मीठे पानी जैसे कि गन्ने का रस हो गया या ग्लूकोज वाटर हो गया, उसकी तुलना में जो नमकीन पानी जो हुआ वह आपके शरीर के लिए आपकी सेहत के लिए इस मौसम में ज्यादा लाभकारी है।
ऐसा भी लोगों में है ये धारणा, पुरानी धारणा कह सकते हैं, कि इस मौसम में आप प्याज रख के चलो अपने साथ तो आपको लू नहीं लगेगी। कितना सही है ये?
देखिए यह एक भ्रम है जो हर एक चीज के साथ जो है थोड़े मिथक जुड़े हुए होते हैं। किसी भी खास भोज्य पदार्थ के अत्यधिक सेवन से लू के लगने या न लगने पर से इसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। लू लगने से आपका बचाव तभी हो सकता है जब आप अपने आप को डायरेक्ट हीट वेव के से अपने आप को बचा पाए। जैसे कि जब कभी भी, इसके लिए सबसे आवश्यक है कि जहां तक संभव हो जब दोपहर के समय में 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अपने आप को घर से बाहर न निकलने की कोशिश करें। अगर निकलना आवश्यक हो तो वो आप जो है वो टोपी टर्बन या ये सब पहन करके या पूरी आस्तीन वाले कपड़े को पहन करके या छाता लगा करके निकलें। और जब कभी भी निकलें तो जिन ये पेय पदार्थों का जिक्र मैंने पिछले प्रश्न में किया उसको लेकर के आप अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट करते रहें।
गुरुनाथ हमारे साथ हैं ठाणे महाराष्ट्र से। गुरुनाथ जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ जी मैम, नमस्कार।
नमस्कार
सर को भी नमस्कार।
नमस्ते जी।
मेरा क्वेश्चन है, जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी जो हार्ट पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब कभी कभी देखा गया है कि हृदय गति रुकने से मौत हो गई है।
जी जी,
मामले सामने आ रहे हैं।
जी बिल्कुल
सही। और ये जो मतलब हमारे यहाँ जो टेम्परेचर सुबह से लेकर मतलब बाहर घर से बाहर कितने टाइम, मतलब सुबह से कितने बजे तक मतलब ऐसा ज्यादा टेम्परेचर रहता है? 3 बजे 4 बजे तक, मतलब ये बताइए
जी। सबसे पहले ये जो आपने पूछा हृदय से संबंधित जो है डिहाइड्रेशन या फिर अत्यधिक हीट वेव से ये क्या असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे शरीर में जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जो कि सबसे पहले जो पेशाब की मात्रा में जो कमी होती है उसके रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब और ज्यादा जो इस बीमारी जब हीट स्ट्रोक के जो आगे के जो लेवल होते हैं उसमें जरूर जो है वो हृदय गति से संबंधित, जिसको कि हम लोग डॉक्टरी भाषा में एरिथमिया कहते हैं, दिल की धड़कनें जो है थोड़ी बेकाबू हो जाती हैं, वो थोड़ा सा या तो उसका रेट कम हो जाता है या अलग अलग तरह के एरिथमिया जो होते हैं वो होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का अत्यधिक कम होना यह भी देखा गया है।
डॉक्टर वत्स, NDMA की ओर से हीटवेव को लेकर क्या परामर्श जारी किया गया है?
देखिए राष्ट्रीय स्तर पर हम एक मुहिम चलाते हैं जिसके माध्यम से सारे राज्यों को और फिर जिला स्तर पर शहरों के स्तर पर हीट एक्शन प्लान बनाने की का निर्देश दिया जाता है और सभी राज्यों को ये सूचना दी जाती है कि जो हीट एक्शन प्लान है उसका 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 इम्प्लीमेंटेशन हो और लोगों को सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। स्कूल के जो आवर्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाए, सुबह में जैसे स्कूल शुरू की जाए, वर्कर्स के जो आवर्स हैं वर्किंग आवर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए,
जैसे निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे होते हैं उनके लिए क्या है?
उनके लिए भी कि 1 से 3 बजे या 1 से 4 बजे तक से काम वो न करें, उसके बाद काम करें। तो दिन भर में जो सबसे जो गर्म वाला भाग होता है जहां तापमान सबसे ज्यादा होता है उस भाग में हम ठंडे स्थान में रहें, हम काम न करें, हम धूप में न जाएं और अपने को सुरक्षित रखें। जो राज्य स्तर पर और शहरों के स्तर पर जो ठंडे जो शेल्टर्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में हीट वेव और हीट स्ट्रोक, जो हीट एग्जॉस्टन जिसकी बात भी डॉक्टर साहब ने कही, उसके लिए आवश्यक तैयारी हो और बड़े बूढ़ों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये सारी जानकारियां हमें हीट एक्शन वेव हीट एक्शन प्लान के माध्यम से हमें हम तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी ख्याल लोगों को कहते हैं कि जो कुछ घरों में कूल रूफ की व्यवस्था करें, मतलब जो छत है छत को कैसे ठंडा रखा जाए, थोड़ा वेंटिलेशन ज्यादा रखा जाए, पानी की व्यवस्था हो, तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से जो तापमान को घर के अंदर तापमान को कमी किया जा सके, तेज धूप से बचा जा सके और लोग जो हैं जो वल्नरेबल तबका है वो अपने को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखे।
जैसे ट्रैफिक पुलिस कर्मी हाँ, उनका काम ही है सड़क पर धूप में खड़े होकर काम करना, तो उनके लिए भी कोई परामर्श
ट्रैफिक पुलिस जैसे है तो ट्रैफिक पुलिस को हमेशा छतरी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जब धूप बहुत तेज हो तो फिर हम दूसरी व्यवस्था करें, वहां ट्रैफिक पुलिस को 2-3 घंटे की राहत दें। तो ये सारी व्यवस्थाएं रहने पर हम ट्रैफिक पुलिस के भी स्वास्थ्य के बारे में हम आवश्यक देखभाल कर सकते हैं। तो दो तरह की बातें होती हैं, एक तो जो अभी की तैयारी है
जी,
और दूसरा एक है कि हम एक अच्छे ऐसे परिवेश में रहें जहां हम अपने को तीव्र गर्मी से बचा सकते हैं। थोड़ी राष्ट्रीय स्थिति के बारे में भी बात करें
जी,
तो पिछले 10-12 दिनों से खासकर मई के महीने में बहुत लंबा ये हीट वेव का स्पेल रहा। और पहले क्या होता था कि 2-3 दिन 3 दिन काफी गर्मी, फिर थोड़ा
बारिश हो जाती थी,
बारिश हो जाती
इस
थी
बार ऐसा नहीं हो रहा
इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो एक हीट वेव का बहुत लंबा स्पेल चला है और अभी भी 4-5 दिन और इसकी संभावना है कि ये चलेगा। दक्षिण भारत में स्थिति बेहतर हो रही है, मॉनसून पहुंच रहा है,
तो करीब पहुंच चुका है
हाँ, लेकिन अभी भी जो पूर्वोत्तर भारत है, बिहार,
वहां लोगों की मौत,
झारखंड, उड़ीसा, इन सारे जगहों में ये हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। टेम्परेचर अगर 2-3 डिग्री नीचे जाने की संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ने की संभावना भी है,
तो उससे अलग तरह की परेशानी
हाँ, जो हीट के साथ ह्यूमिडिटी का जो ये जो हो जाता है इंटरेक्शन, तो वो लोगों को काफी परेशानी उत्पन्न करता है। तो यही सलाह यही है कि धूप से बचें। जो जो दिन में जो सबसे ज्यादा गर्म वाला जो भाग होता है, तीव्र तापमान वाला भाग, उस भाग में बाहर न निकलें और पानी पिएं और अपने को जो कहते हैं कि ना लाइट कलर के ना उजले या
हल्के रंग के
कपड़े पहने, तो ये सारी प्रिकॉशंस लोगों को लेने की जरूरत है। दूसरी बात ये भी हो जाती है आजकल कि पहले ना दिन का तापमान और रात के तापमान में काफी अंतर होता था, तो उसके कारण जब शाम ढलती थी तो लोगों को राहत मिलती थी। इन दिनों ये देखा गया है कि दिन और रात के तापमान
में भी लू चल रही होती
हाँ, तो वो बात और भी परेशानी वाली बात है। इसलिए जो है कि घर का आंतरिक परिवेश, वहां पर टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए, वहां वेंटिलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, वहां छतों की इस तरह व्यवस्था हो कि लोगों को राहत मिले, तो ये सारी बातें हम अपने जो हीट वेव एक्शन प्लान है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं।
जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा एस वत्स और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर पीयूष, ये बताइए कि किन लोगों को इस मौसम में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
जैसा इशारा ये कृष्णा जी ने भी अभी अभी बताया कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले लोग होते हैं, जैसे कि कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए, ऐसे लोग जिन्हें किसी की कोई क्रॉनिक इलनेस रहता हो, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दिल की बीमारी हो गई, वो लोग हो गए या गर्भवती महिलाएं हो गई, तो ऐसे लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
और जो मानसिक रोगी हैं या जो शराब पीने के अभ्यस्त लोग, इन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
तो
उन्हें भी
ये तो एक रेयर जैसी बात हो गई, जैसे ये कि अलग तरह की बात हो गई। जैसे शराब पीने वाले लोगों को तो किसी भी टेम्परेचर में जो है वो ज्यादा वो जोखिम में रहते हैं। और इसके अलावा ऐसे जो अगर हम लोग सामाजिक स्तर पर देखें, ऐसे लोग जिनको कि जो कि अपना घर नहीं है, जो कि वो कहीं पर ज्यादा बार बार ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप में रहते हैं।
रांची से हमारे श्रोता हैं राजेश। राजेश जी
हेलो।
जी
जी मैडम, मेरा ये मेरा डॉक्टर जी से सवाल है। मेरा सवाल इस बारे में मैम कि वैसे तो मैं प्री डायबिटिक हूँ, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम दफ्तर से घर आने के बाद ग्लूकॉन डी ऐसी ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, उसे पी लेते हैं, और कई बार दफ्तर जाने की जल्दी में नाश्ता छूट जाता है, तो गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है तो खाली पेट ग्लूकॉन डी ऐसी ड्रिंक पी लिया, तो उसका क्या नुकसान होता है, मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, और अगर वो ना पिए तो किस तरह के पेय पदार्थ या अन्य चीजों का सेवन कर सकते हैं।
जी देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहती है। मोटे तौर पर जड़ से इसका इलाज या कभी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा ऐसा किसी भी इलाज की पद्धति में वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, नंबर एक बात। तो आपको डायबिटीज के साथ रहना सीखना पड़ेगा, और इस दौरान आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, न सिर्फ इस मौसम में बल्कि हर एक तरह के मौसम में इसको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने ये बताया कि खाते से दफ्तर जाते समय जो है वो भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो हेल्दी फूड के बजाय जो है आपको इधर उधर की चीजें जो है वो ज्यादा खानी पड़ जाती हैं, जिससे आपका शुगर जो है वो अनियंत्रित हो सकता है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि थोड़ा समय आप खुद के लिए भी निकालें, सवेरे 15 मिनट पहले जग जाएं, या फिर जाने के पहले 15 मिनट जो आपका यूजुअल भोजन जो है, जो कि डायबिटिक फूड के बारे में आपको आपके डॉक्टर ने बताया होगा, उस जैसा भोजन करें। और रही वो कि ये किस तरह के पेय पदार्थ को पीने की, में जैसा मैंने कार्यक्रम में एक बार पहले भी बताया कि जो सिर्फ ग्लूकोज वाटर उतना ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाता जितना कि नमकीन पानी। नमकीन पानी में जैसे दाल का पानी हो गया, या शिकंजी हो गई, चने का सत्तू हो गया, या नींबू पानी हो गई, नमक वाला पानी हो गया, और सबसे फिजियोलॉजिकल है जो कि हम लोग ओआरएस का घोल कहते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी है कि प्लेन ग्लूकोज वाटर तो आप बिल्कुल न पिएं, क्योंकि इसके कारण आपका ब्लड शुगर शूट कर सकता है। हालांकि आप प्री डायबिटिक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि डायबिटिक हैं, तो उनको इन सभी तरह के पेय पदार्थ से बचना चाहिए। वो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, और साथ में वो नमक पानी में हल्का नमक मिला करके, या शिकंजी या दाल का पानी, ये सारी चीजें पी सकते हैं।
व्यासनंद शुक्ला हैं गोरखपुर से हमारे श्रोता। जी व्यासनंद जी पूछिए।
हाँ
जी
जी पूछिए।
आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ हाँ
हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
हम सवाल हम यही जानना चाहते हैं, यदि हमको लू लगा है ये कैसे मालूम होगा?
जी जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कभी भी लू लगता है तो इसके प्रारंभिक लक्षण में आपको जैसे सर में दर्द, थकान, चक्कर आना, ये सारे लक्षण रह सकते हैं, उल्टी का होना या उल्टी का मन करना, कुछ लोगों को जो है ये दस्त की भी शिकायत रह सकती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है, और इसके साथ साथ आपको जो है बुखार, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सकता है, ये कुछ प्रारंभिक लक्षण है, और साथ में पेशाब की मात्रा जो कम हो सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, घबराहट, ये सारी चीजें भी लू लगने की निशानी हो सकती, बेचैनी महसूस होना, अकबकाहट जिसको हम लोग कहते हैं वैसा होना, ये सारे जो है प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं लू लगने के। जी
डॉक्टर पीयूष, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए इस मौसम में, और किन पदार्थों को खाना अच्छा होता है?
जी इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, लू लगने के कारण जो दुष्परिणाम ना हो, तो उससे आप कैसे बचा सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप नॉर्मल पानी, सादा पानी आप पी सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत नहीं है वो साथ साथ में जो ओआरएस का घोल होता है वो जरूर प्रचुर मात्रा में पिए। आप इतना जरूर पिए कि हर 3 से 4 घंटे में आपको एक बार खुल करके पेशाब होता रहे। जब कभी भी पेशाब आपको 4 घंटे में एक बार खुल के हो रहा है मतलब आप डिहाइड्रेटेड नहीं है।
खाने में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हमारा भोजन कैसा होना चाहिए इस मौसम में?
खाने में हर वो चीज जो कि सुपाच्य हो, जो कि आपके लिए आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसा भोजन जो है आपको खाने से जो है वो आप ये ले सकते हैं। देखिए ये हमारे बीच में जैसा कि कनक जी आपने शुरू में भी ये बताया था कि कुछ लोग प्याज को लेकर के उनके मन में भ्रांति रहती है या कुछ कच्चा निबूड़ा या ऐसे लेकर के सोचते हैं कि ये हमने खा लिया इसके कारण लू नहीं लगेगा, तो ये सभी भोजन पदार्थ जो हुए उसका सिर्फ स्वाद से रिलेशनशिप है। कोई भी भोज्य पदार्थ आपको लू लगने से नहीं बचा सकता। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि कोई भी भोज्य पदार्थ आपको लू लगने से नहीं बचा सकता। आप नॉर्मल आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ और अत्यधिक जो फ्लूड जो है लेकर के अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहें और सूर्य की रोशनी में जाने से डायरेक्टली आप अपने आप को बचाते रहें और पूरी बांह वाले कपड़े को पहने, छाता, टोपी, टर्बन, ये सारी चीजें जो पगड़ी ये सब पहनते रहें।
क्या ऐसा भी है कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हें लू लगने का ज्यादा डर होता है?
देखिए इम्यूनिटी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। अलग अलग शरीर की अलग अलग इंड्योरेंस रहता है। जैसे जो एथलेटिक हैं, जो बचपन से ही जो ज्यादा काम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज में रहते हैं, तो वो जरूर थोड़े टेम्परेचर को या बाकी और चीज को ज्यादा वो झेल सकते हैं। कोई भी चीज जो आपको बचाएगी वो आपको अपने आप को रिहाइड्रेट रखने की जो कोशिश है वो, जो कि आप बहुत ज्यादा पानी पी करके कर सकते हैं, सूर्य से सीधे ना निकले, पूरे बांह वाले कपड़े पहने, पगड़ी या छाता का प्रयोग करें।
वी कुमार है हमारे अगले श्रोता हैदराबाद से। हेलो,
ये बी कुमार हैदराबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर।
नमस्कार।
मेरा सवाल जो है ओआरएस के बारे में है सर।
जी।
ये ओआरएस जो पैकेट है वो मतलब इस बॉइलिंग इज नेसेसरी और या नॉर्मल मिक्स करके पी सकते हैं?
देखिए बॉइलिंग
के बाद मुझे बहुत साल्टी लगा एंड मैं कोई बीपी या साल्ट पेशेंट नहीं हूँ सर।
जी जी। देखिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये पुड़िया जो होती है वो अलग अलग साइज की होती है। आप उस पुड़िया पर पढ़ लें जिसमें ये लिखा रहता है कि उसको कितने पानी के मात्रा में मिलाना है। यूजुअली जो एक औसत साइज का जो ओआरएस का जो पाउडर होता है वो 1 लीटर पानी में मिलाना होता है। जब कभी भी हम इसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं तब वो बहुत ज्यादा नमकीन लग सकता है। अगर इसको सही मात्रा में अगर पानी में मिलाया जाए तो ये आंसू के जैसा हल्का नमकीन होता है, कभी भी बहुत ज्यादा नमकीन नहीं होता है। तो ये बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए और इसको प्रॉपर मात्रा में मिला करके पिए। पानी उबाल करके ओआरएस को बनाने की जरूरत जो है वो इन्फेक्शन के दौरान में ही, जबकि डायरिया या दस्त होता है वैसा होता है। अगर आपके घर में जो नॉर्मल पीने का पानी है जो कि साफ है आप पीते होंगे तो उसमें आपको उबालने की आवश्यकता नहीं है।
डॉक्टर वत्स, लू से प्रभावित मरीजों के लिए दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो क्या देश के अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था की गई है?
सारे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है और हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हम जो देहातों में भी जो स्वास्थ्य जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर भी जो लू से जो प्रभावित लोग हैं उन्हें उनका इलाज हो सके, उन्हें आवश्यक सहायता दी जा सके। देखिए एक बात मैं सबों को कहना चाहूंगा, जो हीट वेव है वो औसत तापमान से जब 4 डिग्री जब
ऊपर
हो जाता है तब हीट वेव होता है और ये औसत तापमान हर जगह के लिए अलग अलग होता है। जो तटीय प्रदेश हैं, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, लेकिन आज जो व्यवस्था है, आज जो स्थिति है उसमें 45 डिग्री से ऊपर सब जगह है और जब 45 डिग्री से ऊपर होता है तो ये हीट वेव चारों तरफ फैलता है।
अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
नमस्कार।